नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 हिंदी के लिए आज के पॉडकास्ट में मैं पूजा प्रसाद आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब जब अपने देश में बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को DCGI की ओर से आपातकालीन और सीमित इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है, तो लोगों के बीच इसे लेकर तमाम तरह के शक शुभा और सवाल जवाब का दौर पहले से अधिक तेज हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन हो चुका है, जल्द ही देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में हम आज आपको कोविड वैक्सीन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, ताकि भ्रम खत्म हो और केवल सटीक और सही जानकारी आपको मिल सके। कोविड वैक्सीन का पहला फेज जल्द शुरू हो जाएगा। पहले फेज में देश के 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। किन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, यह प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। इसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती जाएगी, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन की दो खुराक दी जानी होंगी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इनके अलावा 50 साल से अधिक की आयु के स्त्री पुरुषों को वरीयता दी जाएगी। 50 साल से नीचे की उम्र के वैसे लोग भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिनमें कोरोना के सिम्टम्स रहे हों। आपको बता दें कि इन दोनों ही वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया गया है। दोस्तों, लोगों में टीकाकरण को लेकर भ्रम की स्थिति है। सरकार यह साफ कर चुकी है कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि आप यह लगवाना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जितने ज्यादा लोगों तक यह वैक्सीन पहुंच जाएगी, उतनी ही जल्दी हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो पाएगी। ऐसा पाया गया है कि करीब 70% लोगों को वैक्सीन लग जाने पर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उनके मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना दे दी जाएगी कि उन्हें कब और कहां टीका लगवाने के लिए पहुंचना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना फोटो ID जमा करवाना अनिवार्य होगा। फोटो ID के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की आपकी पासबुक, MP, MLA, MLC द्वारा जारी किया गया आपका कोई भी पहचान पत्र या फिर पेंशन कार्ड, आपके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र या फिर वोटर ID कार्ड भी जमा करवा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ID रजिस्ट्रेशन के समय जो दिया जाएगा, वही टीकाकरण के समय भी देखा जाएगा और उसी से मिलान किया जाएगा। दोस्तों, वैक्सीनेशन की दो डोज होंगी। डोज के लिए वैक्सीन पॉइंट्स बनाए गए हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उनका प्रॉपर डाटाबेस बनाया जाएगा और उसी हिसाब से उन्हें अगली वैक्सीन भी लगाई जाएगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का तो यह भी कहना है कि इन सभी वैक्सीन की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है। हो सकता है वैक्सीनेशन के चलते मामूली बुखार आ जाए या फिर सिरदर्द या इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द होने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई वैक्सीन 50% तक प्रभावी होती है, तो उसे सफल वैक्सीन की श्रेणी में रखा जाता है। एक सवाल यह भी है कि क्या इसे लगाने के बाद आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, या फिर दोबारा तो कोरोना नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि दोबारा कोरोना होने के आसार बेहद कम है, और अगर किसी को दोबारा संक्रमण हो भी जाता है, तो वह उतना गंभीर नहीं होगा। वहीं यह सोचना कि वैक्सीन लगने के बाद बिना मास्क लगाए घूम सकते हैं, यह भी गलत है। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे उपाय वैक्सीन लगवाने के बाद भी करते रहने होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, COVID-19 से मची तबाही को काफी हद तक यह वैक्सीनेशन थाम लेगा, ऐसी उम्मीद बनती है। आइए वैक्सीन बनाने वाले रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और ट्रायल लेने वाले वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने दिन रात एक करके इसे जल्द से जल्द अंजाम देने की कोशिश की। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी और ज़रूरी सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मैं पूजा प्रसाद आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।